अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन की प्रस्तुति हवेन त्सांग। हवेन त्सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हवेन त्सांग का जन्म चीन के लुओयांग स्थान पर सन 602 में हुआ था और मृत्यु 5 फेब्रुवरी 664 में हुई थी। हवेन त्सांग अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटा था। इसके पिता राजधानी के शाही महाविद्यालय में प्रीफेक्ट थे। इसके पिता एक कन्फ्यूजियनिस्ट थे। इसके बावजूद भी यह बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था। इसके पिता की मृत्यु सन 611 में हुई, जिसके बाद यह अपने बड़े भाई चेनसू, बाद में चांगजी के साथ जिंगतू मठ में रहा। इस काल में इसने थेरवडा और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 618 में सुई वंश के पतन के बाद दोनों भाई चांगान भाग गए, जिसे तांग वंश की राजधानी माना जाता था। वहां से दक्षिण में सिंचुआन गए। वहां दोनों भाई कोंग हुई मठ में 2-3 वर्ष पढ़े। वहीं अभिधर्म को शास्त्र का अध्ययन भी किया। वहीं इसने बौद्ध भिक्षु बनने की बात की। 13 वर्ष मात्र आयु में ही अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण यह मठाधीश बन गया। सन 622 में इसे पूर्ण भिक्षु बनाया गया। जब यह 20 वर्ष का था, बौद्ध पाठियों में मतभेद और भ्रम के कारण इसने भारत जाकर मूल पाठ का अध्ययन करने का निश्चय किया। तब इसने अपने भाई को छोड़कर चांगान वापस लौटकर विदेशी भाषाओं की शिक्षा ली और वह 626 में संस्कृत में पारंगत हो गया। इसी काल में इसे योग शिक्षा का भी शौक हुआ। सन 629 में उसे एक स्वप्न में भारत जाने की प्रेरणा मिली। उसी समय तंग वंश और तुर्कों में युद्ध चल रहे थे। इस कारण राजा ने विदेश यात्राएं निषेध कर रखी थी। इसने कुछ बौद्ध रक्षकों से प्रार्थना करके लियांगजाओ और किंघाई प्रांत होते हुए तंग राज्य से पलायन किया। फिर इसने गोबी मरुस्थ होते हुए कुमुल, तियान शान पश्चिम दिशा में होकर तुरफान पहुंचा। यह सन 630 की बात है। वहां के बौद्ध राजा ने इसे आगे की यात्रा हेतु सशस्त्र किया। उसने इसे कई परिचय हेतु पत्र भी दिए। फिर यह डाकुओं के साथ यांकी और थेरवाडा मठ होते हुए कुचा पहुंचा। वहां से पूर्वोत्तर होने से पहले आखरू से गुजरा, फिर किर्गिस्तान के तियान शान दर्रे से होते हुए तोकमक, उज्बेकिस्तान होकर महान खान से मिला। फिर वो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ताशकंद में चेशे वर्तमान राजधानी पहुंचा। फिर और पश्चिम में मरुस्थल के बाद समरकंद पहुंचा, जो फारस के बादशाह के अधीन था। वहां वे बौद्ध खंडहरों में घूमे। उसने स्थानीय राजा को भी अपनी शिक्षाओं से प्रभावित किया। फिर और दक्षिण में इसने प्रसिद्ध पामीर पर्वतमाला को पार किया और अमू दरिया और तरमेज पहुंचा। वहां इसे 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षु मिले। वहां से कुंडूज पहुंचा और वहां के राजकुमार की अंत्येष्टि देखी। वहीं उसकी मुलाकात भिक्षु धर्म सिंह से हुई। उसके बताने पर उसने बलख की यात्रा की और वहां अनेकों बौद्ध स्थल देखे। इनमें खास था नव विहार या नवबहार, जिसे पश्चिमतम बौद्ध मठ कहा गया। वहां उसे लगभग 3000 भिक्षु मिले, जिनमें प्रज्ञानाकर भी थे। यहीं इसने महत्वपूर्ण महाविभाष पाठ्य देखा, जिसे बाद में चीनी में अनुवाद भी किया था। फिर दक्षिण में बामियान आए, जहां इसकी राजा से भेंट हुई और इसने दरथरवडा मठ और 2 बड़े मठ भी देखे। फिर पूर्व में शिबर दर्रे को पार कर कापिसी पहुंचे। यहां महायान के 100 मठ थे और 6000 भिक्षु थे। यह गांधार प्रदेश था। इस यात्रा में इसे हिंदू और जैन भी मिले। फिर यह जलालाबाद और लघमन आया। यहां आकर इसको संतोष हुआ कि वो भारत पहुंच गया है। यह सन 630 की बात है। जलालाबाद में कुछ ही भिक्षु थे, लेकिन कई स्तूप और मठ थे। वो यहां से खाइबर दर्रा होते हुए तत्कालीन गांधार राजधानी पेशावर पहुंचा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म पतन पर था। इसने कई स्तूपों की यात्रा की, जिनमें कनिष्क स्तूप प्रमुख था। वर्तमान में यह सब तोड़ा जा चुका है, परंतु सन 1908 में हवेन त्सांग के विवरण द्वारा इसे खोजा गया था। पेशावर से वह पूर्वोत्तर में स्वात घाटी होते हुए उद्यान पहुंचा, जहां उसे 1400 मठ मिले, जिनमें पहले 18000 भिक्षु रहते थे। शेष भिक्षु महायान थे। फिर उत्तर चलने पर बुनेर घाटी पहुंचा। फिर इसने सिंधु नदी पार की, हुंदपर और तक्षशिला एक महान बौद्ध राज्य जो कश्मीर के अधीन था। यहाँ से वह कश्मीर पहुँचा। यहीं एक बुद्धिमान प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु के साथ 2 वर्ष व्यतीत किए। सन 633 में तसांग ने कश्मीर से दक्षिण की ओर चिनाभुक्ति, जिसे वर्तमान में फिरोजपुर कहते हैं, की ओर प्रस्थान किया। वहां भिक्षु विनीत प्रभा के साथ 1 वर्ष तक अध्ययन किया। सन 634 में पूर्व मन जलंधर पहुंचा। इससे पूर्व उसने कुल्लू घाटी में हिनायन के मठ भी भ्रमण किए। फिर वहां से दक्षिण में बैरत, मेरठ और मथुरा की यात्रा की। यमुना के तीरे चलते चलते मथुरा में 2000 भिक्षु मिले और हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बाद भी दोनों ही बौद्ध शाखाएं वहां थीं। उसने श्रुघ्न नदी तक यात्रा की और फिर पूर्ववत मतिपुर के लिए नदी पार की। यह सन 635 की बात है। फिर गंगा नदी पार करके दक्षिण में संकस्य पहुंचा, जहां कहते हैं कि गौतम बुद्ध स्वर्ग से अवतरित हुए थे। वहां से उत्तरी भारत के महासम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्याकुब्ज वर्तमान कन्नौज पहुँचा। यहाँ सन 636 में उसने 100 मठ और 10,000 भिक्षु देखे, महायान और हिनयान दोनों ही। वह सम्राट की बौद्ध धर्म की संरक्षण और पालन से अतीव प्रभावित हुआ। उसने यहाँ थेरवड़ा लेखों का अध्ययन किया। फिर पूर्व की ओर अयोध्या और साकेत का रुख किया। यहाँ यौगिक शिक्षा का गृह स्थान था। फिर वह दक्षिणवत कौशाम्बी पहुँचा। यहाँ उसे बुद्ध की स्थानीय छवि की प्रति मिली। फिर वह उत्तर में श्रावस्ती पहुँचा और अंततः प्रसिद्ध कपिल वस्तु पहुँचा। यह लुम्बिनी से पूर्व अंतिम पड़ाव था। लुम्बिनी बुद्ध के जन्म स्थान पहुँचा, वहीं उसने अशोक का स्तंभ भी देखा। सन 637 में वह लुम्बिनी से कुशीनगर रवाना हुआ, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। फिर वह दक्षिणवत सारनाथ पहुँचा, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किया था। यहाँ उसे 1500 भिक्षु मिले। फिर पूर्ववत वह वाराणसी और फिर वैशाली और फिर पाटलिपुत्र वर्तमान पटना पहुंचा और वहां से बोध गया पहुंचा। यहां से 2 भिक्षुओं सहित वह नालंदा गया, जहां उसने अगले 2 वर्ष व्यतीत किए। तसांग ने यहां तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत और बौद्ध योग शास्त्र सीखा। यहां से वह दक्षिण की ओर चला और आंध्र देश में अमरावती और नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध विहार भ्रमण किए। फिर वह कांची, जो कि पल्लव वंश की शाही राजधानी थी, पहुंचा। यह बौद्ध धर्म का शक्ति केंद्र था। अपनी यात्रा के दौरान वह अनेकों बौद्ध प्रवीणों से मिला, खासकर नालंदा विश्वविद्यालय में, जहां वृहत बौद्ध शिक्षा केंद्र था। चीन लौटने पर उसके साथ 657 संस्कृत पाठ्य थे। सम्राट के सहयोग से उसने बड़ा अनुवाद संस्थान चांग में खोला, जिसे वर्तमान में जियान कहते हैं। यहाँ पूरे पूर्वी एशिया से छात्र आते थे। उसने 1330 लेखों के अनुवाद चीनी भाषा में किए। उसका सर्वोत्तम योगदान योगकारा के क्षेत्र में था। तसांग को उसके भारतीय बौद्ध पाठ्यों के यथार्थ और सटीक चीनी अनुवादों और बाद में खोए हुए भारतीय बौद्ध पाठ्यों की उसके द्वारा किए चीनी अनुवादों से पुनर्प्राप्ति के लिए सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उसके द्वारा लिखे चिंग वैशीलू इन पाठ्यों पर टीका के लिए भी चिरस्मरणीय रहेगा। उसका हृदय सूत्र का अनुवाद अब तो मानक बन चुका है। उसने लघु काल के लिए ही सही, परंतु चीनी फाक्सियान विद्यालय की स्थापना की थी। इस सब के साथ ही उसे हर्षवर्धन के कालीन भारत के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है। सन 646 में सम्राट के निवेदन पर तसांग ने अपनी पुस्तक महान तांग वंश में पश्चिम की यात्रा पूर्ण की। यह मध्य एशिया और भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है। इसका फ्रेंच में 1857 में अनुवाद स्टेनिसलस जूलियन द्वारा किया गया था। भिक्षु हुली द्वारा तसांग की जीवनी भी लिखी गई। एक मानव खोपड़ी, जिसे तसांग की बताया जाता है, वह तियानजिन के टेंपल ऑफ ग्रेट कंपैशन में सन 1956 तक थी और फिर दलाई लामा द्वारा लाई गई और भारत को भेंट कर दी गई। यह वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। धन्यवाद।